आज के सवाल की एक और वजह, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो इसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो इसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। क्या पता चला बड़ों का बिगाड़ पूरी कौम का बिगाड़ बन जाता है। चंद बड़े लोग, दौलत वाले, पैसे वाले, इन लीड जो हैव्स होते हैं, जब वो मस्तियां करते हैं तो वो ही सारी कौम का मुकद्दर बन जाता है। तब अजाब का फैसला हर बस्ती पर चिस्मा हो जाता है और हम इसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। दुआ कीजिए हमें भी देखने की तौफीक मिल जाए। हमारे नामएमाल हमारे साथ चिपके हुए हैं। अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया तो अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी बच नहीं सकते। अब एक और जवाल की रेसिपी का इंग्रेडिएंट, हुब्बे दुनिया, इस दुनिया को पाने की तलब। तो का मन का न युरीद अलाजिलता जलना लहू फी हमा नशा, जो कोई इस दुनिया में जल्द हासिल होने वाले फायदों का ख्वाहिशमंद हो इसे हम यहीं दे देते हैं। पकड़ो, बिल्कुल एक बेजारी का अंदाज है। जैसे आप देखिए कि फकीर आता है ना तो अच्छा नहीं लगता बंदे को उसका बात करना सुनना, तो लोग कहते हैं जाओ जाओ बाबे को आटा दो, जाओ जाओ फारिग करो इसको, चलो ये रोटी दे दो, रात का बचा खाना दे दो। इसी तरह याद रखिए दुनिया के तलबगार को अल्लाह एक बेगर समझते हुए, फकीर समझते हुए कितनी छोटी चीज का तलबगार होगा, का जल्दी दे दो। लेकिन सबको फिर भी नहीं देते। लिमन नुरीद, जिसके लिए हम चाहते हैं, और मान नशा, जितना चाहते हैं, फिर हम उसको यही दे देते हैं। और जो कुछ भी जिसे देना चाहे फिर इसके किस्मत में या इसके नसीब में जहन्नुम लिख देते हैं, जिसको वो तापे का मलामत सदा और रहमत से महरूम। और इसके बरक्स और जो आखरत का ख्वाहिशमंद हो, दुआ करें कि अल्लाह मुझे आखरत की ख्वाहिश लगा दे। और अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह आज से तो मैं दुनिया के साथ साथ अब आखरत की ख्वाहिश रखने वाली बन गई। तो क्या सिर्फ आखरत ख्वाहिशों पे मिलेगी? नहीं, मन अराद अल आखिरत नहीं वसालहा, दूसरा स्टेप, कोशिश करनी है। कर तो रहे हैं इतनी मुश्किल से बैठे हुए। जैसे वो किसी ने एक चीज भेजी कि कोई औरत है तो मियां बीवी होंगे तो उसको कहती है आप तरावी पढ़ने नहीं जाएंगे? कहता नहीं तुम्हें पता ही है मेरी टांगों में इतना दर्द होता है। कहने लगी फिर दोबारा आती है अच्छा रोजा नहीं रखेंगे? कहता तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरे ऐसे पेट में दर्द होता है। वो फिर आती है फिर इफ्तारी तो मैं ना बनाऊं? तो कहता क्यों, मैं कोई काफिर हूं मैं इफ्तारी ना करूं? ये है बात। सालहा, कोशिश तो कर रहे हो लेकिन कितनी? सायहा, आखिरत के लिए उतनी कोशिशें करो जितना तुमने उसमें रहना है, और दुनिया के लिए उतनी कोशिशें जितना उसमें रहना है। जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और इसके लिए कोशिश करे जैसी कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे शख्स की कोशिश की कदर की जाएगी। हाँ, इसके अलावा इनको भी और उनको भी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों के तलबकारों को, हम दोनों को दुनिया का सामान तो दे ही देते हैं। यानी दुनिया मांगो या आखिरत मांगो, दुनिया तो मिलनी मिलनी है। बेफिक्र हो के आखिरत मांगे, दुनिया मिलेगी। लेकिन सिर्फ दुनिया मांगेंगे तो सिर्फ दुनिया मिलेगी जितनी जब अल्लाह चाहता है। तो कहा दुनिया तो हम सबको देते हैं, ये तेरे रब की अता है, तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं। मगर देख लो दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है, और आखिरत में इसके दर्जे भी और ज्यादा होंगे और इसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी। तो बात यह है कि अल्लाह सुबहाना तला क्या बताते हैं कि अपने ऊपर गौर करो, निशानियां देखो। आप इमेजिन कीजिए कि किसी के दो गोदाम थे ना, गोदाम कह लीजिए, स्टोरेज हाउस कह लीजिए, अब वो जल गए। एक का माल इंश्योर्ड था। हम इस वक्त इस बहस में नहीं कि इंश्योरेंस की क्या डिटेल्स है, मिसाल देने के लिए समझते हो कि किसी ने उसके नुकसान को पूरा करने का दावा किया था और दूसरे ने क्या कहा था कि दूसरे का इंश्योर्ड नहीं था। अब जब एक का गोदाम जला वो तो खुश होगा कि हो सकता है पुराना माल पड़ा था, बिक भी ना करा था, लेकिन उसको कंपनी की तरफ से पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरे का सारा नुकसान हुआ। अब इस सारी मिसाल को हटा कर रख लीजिए कि मोमिन कौन होता है, उसकी इंश्योरेंस अल्लाह के साथ होती है। मोमिन का कभी नुकसान रहता नहीं है। अल्लाह कहता है तुम करोगे रवा का ना तार रब्बी का महजूरत। दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज तो पता नहीं क्या क्या धोखे करके तुम्हारे साथ शुरू में तुमसे हटा लेंगी, सारी दुनिया से अरबों मिलियन ट्रिलियंस अपने खातों में डालेंगे और तुम्हें सेंध कर देंगे, आपकी गलती उसकी गलती इधर से उधर से, लेकिन अल्लाह आना पाई पूरा कर देगा। लिख ले, आज भी अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के लिए कोई अपना नुकसान करे, हो सकता है इस वक्त भी आप इसी अपने जाती काम के लिए जाने वाले थे, आप जाते आपको फायदा होता, और आप चुपके से अल्लाह को ये कहकर आ गए, अल्लाह अपनी जाती चीज को छोड़कर तेरे किताब के लिए आ गई हूं, तू मेरा काम खुद करा दे। अल्लाह पे यकीन रखिए, वमा काना ता रब्बिका महजूरा, फिर जो रब देता है वो तो बंदा सोच ही नहीं सकता। लोग चक्कर लगाएंगे, मुश्किलों में पड़ेंगे, फिर कहीं काम होगा, इतना माल लगेगा, वकीलों के पास जाएंगे और क्या कुछ, अल्लाह आपके काम घर बैठे करा देगा। ये अल्लाह का वादा है, इसको आजमा कर देख लीजिए, अल्लाह कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन हमारा हाल है, हम इस्लाम को सौतेले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और अपने हर नुकसान को उसके जिम्मे लगाते हैं। हाँ देखा ना, पढ़ने आ गई थी तो ये हो गया, पीछे से ये हो गया, आज ये नुकसान हो गया, आज वो हो गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम जो मर्जी करो, मेरे वादे सच्चे हैं। और अल्लाह के वादे कौन से हैं? जिस पे अल्लाह ताला के साथ इंसान जितना यकीन रखे। फिर अब देखिए यहाँ ये जो बात की ना, फद्दलना बादहुम अला बाद, इससे भी एक बात समझ आती है कि जब अल्लाह सुभान ताला के रास्ते में एक इंसान निकलता है तो अल्लाह दुनिया में उसको इज्जत भी देता है, दुनिया में इस्लाम की इज्जत है। लेकिन हमारा हाल है कि हम इस्लाम को और दीन को और दीन वालों को खाता पीता तो देख ही नहीं सकते। ऐसा गुलामी का हमारे दिमागों दिलों पे कब्जा हुआ, हम कहते हैं मुसलमान और इस्लाम जूतियां चटखाएं, इधर फिरे उधर फेंके, और काम तो बस दुनिया वाले, काफिर तो बस ऐसे कर रहे हैं। लेकिन असल तो बात यह है कि दुनिया भी अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाई थी। जब हम अल्लाह के काम करने लगते हैं, अल्लाह ताला हमारे काम करने लगता है। आज मस्जिद के इमाम साहब को कोई जरा लैंड क्रूजर में निकलता देखे, लोग बदगुमान हो जाएंगे, हो सकता है सारी डोनेशन ये अपने घर ही ले गए, किसी ने खुदा नहीं छोड़ा होता। अल्लाह दीनदार और इमाम साहब को क्या वो लैंड क्रूजर छोड़िए, वो इससे बड़ी चीजें नहीं दे सकता? दे सकता है। लेकिन हम दीन को सौतेला समझते हैं, हमने दीन के साथ महरूमी का तसव्वुर लगाया हुआ है, इसीलिए फिर हम दुनिया के लिए भी कोशिश नहीं करते। और वो बेचारे क्यों फिर इतनी मेहनत करें, उनको पता है ना हम अच्छा पहन सकते हैं, लोगों ने शक करना, ना खा सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, चलो फिर बैठो मस्जिद में बैठ के चंदे मांगो, जरूरियात पूरी कर ले। याद रखिए, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन के नाम पर या दुनिया के नाम पर मेहनत करने के साथ है। अल्लाह ने किसी इमाम साहब को नहीं कहा कि आप 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में बैठे रहे, नहीं, फजर से लेके जोहर के बीच में जो एक तवील टाइम है, ये इमाम और दीनदार हजरात को मेहनत सिखाने के लिए कि जाओ तुम भी दुनिया के काम करो, तुम भी साइंस सीखो, तुम भी जाके मेडिकल के प्रोफेशन में जाओ, क्योंकि तुम ही ने तो इन्हीं मेंबरों से लोगों को मैसेजेस देने हैं। लेकिन हुआ क्या, जब हमने दीन को इतना लेट डाउन किया, दीनदारों ने फिर बैठ के सिर्फ मस्जिदों में बैठकर यही बातें कहनी शुरू की। उनकी मजबूरी थी कि दुनिया छोड़ दो, क्योंकि लोगों को उनकी अच्छी नहीं लगती, उनको लोगों की अच्छी नहीं लगती। कहाँ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के इमाम काबा हो या किसी मस्जिद के इमाम हो और उनके आगे पीछे अर्दली हो और उनको इतनी इज्जत मिले। किसी ने एक मुझे वीडियो भेजी, एक आध महीना हुआ है इमाम काबा किसी जगह आए, आप लोगों को मिली कभी? वैसे देख के दिल को कुछ होने लगता है, किसी जगह इमाम काबा गए होंगे तो वहां जो उनका वेलकम हुआ और जो उनकी गाड़ियों की थी तो उसकी बैक पे उन्होंने वो मरहबा इमाम काबा मरहबा, लोग उनकी गाड़ियों के शीशे खोल रहे। ये इन्हीं दिनों की बात है जब ये हमारे ट्रिप शुरू हो रहे थे, तो मैंने उसको पूरा देखा तो मेरे आंखें भर आई कि दीन की कितनी इज्जत है। कुछ नहीं मुझे उसमें समझ आया, ये बात समझ आई कि जैसे लोग अदाकारों गुलकारों और फनकारों के नाम पे खुश होते हैं, इसी तरह आज भी दीन की कदर करने लगे। और इनकी शक्ल से कौन जाने, इनके रंग को कौन जाने, इनको देखे कौन, इनकी इज्जत किस लिए इस कुरान के साथ है। तो याद रखिए, ये कुरान जो इस्लाम आपको अपना सब कुछ देता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब दुनिया में इज्जत है तो फिर आखिरत में तो दर्जे और भी ज्यादा होंगे। दुनिया में अपनी इज्जत और अपनी चीजों को सामने रख कर सोचिए कि उम्मत मुस्लिमा को आखिरत में क्या मिलेगा, तो मेरा अल्लाह के सर दामन में झुक जाएगा और खौफ आएगा कि अल्लाह जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है वो आखिरत में ना करना। लिख लीजिए, ये दुनिया आखिरत का एक तारुफ है, ये दुनिया एक ट्रेलर है। कोई फिल्म बनती है ना तो लोग उसमें पहले ट्रेलर्स डालते हैं, क्लिप्स डालते हैं, ये अहम है, ये अच्छा होगा, ये फला होगा। ये दुनिया हमें क्लिप्स दिखाती है आखिरत के, असल स्टोरी वहां होगी। इसलिए अब ये सारी फजीलतों पे जितनी बात हुई, क्योंकि ये अल्लाह का मिजाज समझने की जरूरत है। फिर इसके बाद आप वो अहकाम अशरा, जिनको ज्यूज ने 10 कमेंडमेंट्स कहा, और आज कुरान में यहाँ 22 से लेके आगे तक हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये अहकाम अशरा का कुरानी वर्जन है, और इसका आगाज फिर तौहीद से लेकर फिर तरतीब के साथ चलेगा। तो लिख लीजिए कि जवाल को रूज में बदलने वाली कहानियां क्या है। पहली बात, तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना, वरना मलामत ज़दार बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। वालदैन के साथ नेक सलूक करो, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो इन्हें ओफ तक ना कहो और न इनको छिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक जाओ, और तुम्हारी जुबान पर दुआ क्या हो इनके लिए, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे पाला बचपन में, तू भी इन पर रहम कर। हाँ, बाकी तुम पूरी कोशिश करते हो उनको खुश रखने की, लेकिन बाज दफा वो अपनी कुछ बीमारियों की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदगुमान रहते हैं, वो खुश होते नहीं। तो डोंट वरी, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिलवाबीन गफूरा, अगर तुम साले बनकर रहोगे तो वैसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है, और जो अपने कसूर पर आगाह होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। यहां आप देखिए कि माँ बाप की बात है, हकीकत है कि अल्लाह के हक के बाद फिर माँ बाप का हक है। अल्लाह को हक दिलवाना आता है, अपना भी आता है। अगर अल्लाह सुब्हान तआला मुतसब होते, कहते सिर्फ मुझे दो, किसी इंसान को ना पूछो, किसी की ना सोचो, लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ अपने बाद माँ बाप की बात दी और इख्तियार दिया। जिस तरह हमारी आंखें झपकती हैं, जिस तरह दिल धड़कता है, इसी तरह माँ बाप के आगे आके इसी तरह हो जाते, आंखें झुकी हुई और झुके हुए, और ऐसे मुर्गी की तरह पर समेट के बैठते और बात करते हुए उफ भी ना कहते, क्योंकि उफ के साथ उनका दिल बुझ जाएगा। अब देखिए आपके उफ, अगर आपके सामने शम्मा होगी ना तो बुझ जाएगी इस बुक से। इसीलिए किसी ने कहा कि आपकी उफ से माँ बाप के दिल का चिराग बुझ जाता है। हजरत अली फरमाया करते थे कि अगर उफ से भी कोई छोटा कलमा होता तो अल्लाह ताला वो भी कहते थे। तो याद रखिए, माँ बाप को टॉलरेट नहीं करना, उनको ऑनर देना है, वो आपके लिए आपकी इज्जत देने वाली बात है। कौलन करीमा, चीखना नहीं, तड़पना नहीं, आप तो ये करती नहीं, आपको तो वो नहीं है। अब देखिए, उम्र के साथ बुढ़ापे, गम, सदमे, बीमारियां इंसान को चिड़चिड़ा कर देते हैं, चुपके से सुनते रहो। ये ना कि आप भी तो ये करती थी। बुढ़ापे में इनसे शिकवे करते हैं, हमें पाला अच्छा नहीं, हमारे ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने मुझे ये नहीं दिया। नहीं, कैसे खुश रखे माँ बाप को, उनसे उनके बचपन की बातें करें। अच्छा अम्मी आप वो सुना, फिर बोलते अम्मी याद है आपने मेरा ये फ्रॉक लिया था, आपने ये खिलौना लिया था। उनकी शादी की बातें सुने, देखिए वो बूढ़ी होने के बावजूद वो शर्मा के दुपट्टा हाथ में फैलाने लगेंगी। उनके अंदर हया ज्यादा थी, लेकिन आज बच्चों के पास कहाँ वक्त है, आज हम कहाँ इन चीजों को सुनते हैं। याद रखिए कि अगर आप बहुत मसरूफ हैं और अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, तो माँ बाप को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है। इज्जत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, स्टेटस मिल सकता है, मगर जन्नत मिल नहीं सकती। इसलिए उनका ख्याल रखना है। और एक और फर्क भी समझ लीजिए कि माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी तरबियत नहीं करनी। अल्लाह ने मुझे आपको ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप को ट्रेन करो, ट्रेनिंग का काम बच्चों का है, वो उन्होंने करनी थी, जैसी आपकी कर दी, अब आप वो बदलेंगे नहीं। ये भी याद रखे, बूढ़े बदलते नहीं, छोटी सी बेल होती है, मजबूत कच्ची सी कोम्पल है, वो जिधर मोड़े मुड़ेगी। अब मजबूत दरख्त को आप मोड़े, टूट जाता है, तो लिहाजा आप क्या करें, सब्र करें ना, अल्लाह के मामले में ना किसी और के मामले में आप अपनी मर्जियां करें, बल्कि अल्लाह ताला के सामने लें। और आप देखिए कि आज के माँ बाप को अपने बच्चों को ये मैनर सिखाने चाहिए। आप कहते हैं अपने मुंह से कैसे सिखाएं, माँ है ना, यानी आप अपने हस्बैंड की इज्जत करना बच्चों से सिखवाएं, उनको बताएं अब्बू के साथ से बात करते हैं, अब्बू के आने पे ये करते हैं, अब्बू के से चीज ले लेते हैं, ये कुर्सी अब्बू की है, ये खाना सब पहले अब्बू शुरू करेंगे। फिर ये पहले करती थी हमारी माँ, पहले बच्चे ज्यादा डिसेंट लगते थे। बाप है ना, तो वो बीवी यानी अपनी बीवी और बच्चों की माँ की खिदमत कराए कि बेटा अम्मी के सामने यूं बैठते हैं, अम्मी की बात है। और कभी आपका बच्चा शाउट करे, चीखे चिल्लाए, जूता आते स्कूल से यूं फेंके, बस्ता इधर फेंके, बात ही ना करें उससे। ये इंसान का बच्चा बहुत सेंसिटिव है, जानवर नहीं है हमारे बच्चे, उनको सब समझ है। लेकिन अफसोस की बात है, जब नेमतें बहुत हो जाती हैं तो हमारे बच्चे में ब्लैकमेल करते हैं। कभी बच्चों के माँ बाप से बात करने के अंदाज को देखे, दिल करता है कि इन बच्चों को भी डांटे और माँ बाप को भी डांटे कि आप इनकी बातें कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जरूरत है इस बात की कि अपने आप को इन सारी चीजों के साथ लगाकर हम अपने बच्चों को करें और अपने बारे में। अब यहाँ एक आखिरी चीज का भी जवाब आपको मिल तो गया, कि बस वो इंसान जब नेक होता है और माँ बाप कभी दीन का इतना ट्रेंड नहीं होता, और खास तौर पे ये जो आयत नंबर 25 है ना, ये उन तमाम लोगों का एक कॉमन मसला है कि जो दीन के काम करते हुए माँ बाप को पूरा नहीं देख पाते या उनका हक अदा नहीं कर पाते। होते नेक हैं जैसे रिवर्ट्स हैं और इस तरह के लोग हैं, ये फुल टाइम जिनको दीन की जिम्मेदारी है। आमतौर पे तो माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कभी नहीं रहते तो उस वक्त वो गिल्ट करते हैं, क्या करें, सबको बता रहे हैं माँ बाप का क्या करें, फिर अगर इधर है इनको तो हम 10 दफा और भी देख सकते हैं इनके लिए और भी, और इनको, और 5 दफा माँ बाप को जरूरत कोई नहीं होती, आप पास बैठे रहे बस इतनी उनके लिए काफी है, वो काम भी अपने खुद करते, बास बड़े वो अपने हाथ से खाते पकाते काम करते हैं। तो आप कहते हैं कि यहाँ बैठ के सिर्फ इनको देखना है, हालांकि इस वक्त में जाकर हो सकता है 10-100 लोगों को मैं फायदा दे दूं। अब वो बीच की कश्मकश में तो उसका जवाब दिया गया, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम तुम्हारे दिलों में उनके लिए अच्छे ख्याल आता है, तुम उनकी ख्याल करना चाहते हो और बस माँ बाप खुश होते ही नहीं है तो क्या करें फिर ऐसी औलाद है। अल्लाह कहते हैं तुम अच्छे ही रहो, इन तकूनु साले, तुम दुआएं करो, तुम अपने वक्त की कमी तोहफों से पूरी कर दो, तुम उनको माल दे दो, गिफ्ट दे दो, उनको कुछ करो, उनको अच्छी बातें करो, उन वक्तों में उनको ज्यादा वक्त दे दो जब तुम्हारा वक्त किसी दूसरे को नहीं चाहिए। तो फाइन होगा नवाबीन, क्योंकि ऐसे सहाबा अल्लाह के नबी के सामने आते थे। और याद रखिए ये इंटरफेस की सूरतें, कोई बच्चा मुसलमान हो जाता, कोई माँ बाप नहीं है, माएँ जिद करती, अबू हुरैरा के इस्लाम लाने का वाकया पढ़े, ये सारे आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी हद तक सूरत लुकमान के साथ, सूरत अनकबूत की आयतों में, और इसी तरह वहां वाकया आएंगे। बाज माए लिटरली नाराज हो गई, एक माँ ने कहा तू इस्लाम जब तक नहीं छोड़ता कंघी नहीं करूंगी, किसी ने कहा धूप में बैठूंगी, किसी ने कहा खाना नहीं खाऊं। अब आप सोचिए यूथ में से बच्चा है, अब वो इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं और माँ बाप उसको थ्रेट कर रहे हैं तो क्या करें। हजरत उमर ने कहा डोंट वरी, गर्मी लगेगी बाहर आ जाएगी, जब जुएं सर से लटकेंगी मुंह में तो खुद ही कंघी कर लेगी। तो ब्लैकमेलिंग भी नहीं करनी, माँ बाप को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और याद रखिए मैं आपको इसमें सबसे पहले तो मैं आपको अपना कहूंगी, थोड़ा बहुत जो अल्लाह दीन का काम लेता है ना, मैं इतनी ज्यादा इस चीज पे अपनी सास की शुक्र गुजार होती हूँ, मैं अभी भी उनके पास होके आई हूँ। और मैं उनको यही कह रही थी कि मामा आपको नहीं पता कि आप घर बैठे आपके बेटे के जरिए अगर अल्लाह कोई काम ले रहा है तो इसमें आप हिस्सेदार हैं, और वो इतनी खुश होती हैं इस बात पे। हालांकि कई दफा फील होता है कि उनको हमारी जरूरत है, लेकिन वो कहती नहीं बेटा जहां तुम्हारा काम है वहां रहो, जहां जो खुश रहो कुछ करो, तो ये बात कितना सुकून देती है। और वाकई मैं क्यामत के दिन कह सकती हूँ कि मैं तो 10 20 100 1000 गलतियां करके इधर जाती होंगी ना, लेकिन जो लोग बीच में मेरे शौहर मेरे घर वाले आप सबके बीच जो भी दिन का करता है उनकी तो फ्लॉलेस है, मैं तो गलती करूंगी, उन्होंने तो बस मदद की ना। तो दीन का ताउन करने वाले घर वाले बीवियां बच्चे शौहर सब कान खोल के सुन ले कि अगर उनके घर वालों में कोई भी नेकी का काम करता है तो आपका खामोश हिस्सा है, वो एक साइलेंट पार्टनर है कि जिसका नुकसान कोई नहीं, पैसा लगा के बैठे हुए मेहनत करने वाले तो मेहनत कर रहे हैं। तो बाज इसी तरह मर्द भी दीन पे ज्यादा होते हैं तो बीवियां नखरे करती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड अगर दीन के किसी काम में मुआविन है, मस्जिदों में और मदरसों में दावा में, डोंट वरी, कुछ हक छोड़ दें, बाकी जन्नत में जाके हुम वाजवाज हुम अलराय की अनजरून, अल्लाह ताला वहां जन्नतों में बहुत खैर देगा। क्या हम सारा कुछ इस दुनिया में लेना चाहते हैं? तो दुआ कीजिए। और वो क्या खूबसूरत जोड़ा है कि दोनों ही लगे हुए, बच्चे भी लग गए बूढ़े भी लग गए, तो वो है घर में असर, होम स्वीट होम। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह हमारे बच्चियों को वो जोड़े दे कि जो उनके दीन के मुआविन हो। और इसके लिए बेटियों को दीन में लगना पड़ता है, ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद है, इधर बच्चियां कुरान सीखने आई, अल्लाह ने उनके दिल दिमाग को बदला, इतना प्यारा रिश्ता वही हो जाता है। मैं कहती हूँ लोग कहते हैं रिश्ते बताएं, मुझे भी लोग बहुत सारे आके कहते हैं जब हम अपनी जगह पे होते हैं, लोग कहते हैं इनके पास लड़कियां बहुत आती हैं, तो मैं कहती हूँ आइए बैठिए क्लास लीजिए आपको इधर बहुत दिख जाएंगी। कोई आए मैं कहती हूँ अच्छा वीकेंड पे आ जाएं, बहुत बच्चियां आती हैं आप देख लें, खुद तो आए पहले देखते हैं आपका बेटा नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो मैं तो खुद हंसती हूँ कि मेरा तो अपना रिश्ता मदरसे में हुआ था, तो किसी और की क्या बात करते हैं। लोग कहते हैं रिश्ते नहीं होते, हमारा गुमान है हर साल जब हम नया कोर्स शुरू करते हैं यूथ में से एक पूरा ग्रुप बन जाता है, अल्लाह के हुक्म से 8 10 बच्चियां, कोई स्कूल छोड़ती है कोई जॉब छोड़ती है, एक साल का गैप लेते हैं। और एंड पे भी ये लंदन कोर्स की मैं आपको बात बता सकती हूँ कि इस लंदन कोर्स में हमारे साथ जो यंग बच्चियां थी एंड पे मेरा लिए सिर्फ एक दो बच्ची बची जिसकी शादी या रिश्ता नहीं, वो सब इसी कोर्स में चली गई। और मुझे गुस्सा आया कि ये क्या मसला हो गया आपने हमारा कोर्स छुड़ा दिया, वो शादी के बाद क्या आपको पता ही है फिर जो मामले शुरू हो जाते हैं। तो यकीन करें देना भी अल्लाह ने, आप घर बैठ के भी अल्लाह से लेंगे आप अल्लाह के रास्ते में निकले, घर बैठे को कौन देता है, बाहर आते हैं तो मिलता है ना, तो ये अल्लाह की अता है। अब आपके अच्छा रिश्ते कराने के लिए दाखिले करा ले तो फिर ये भी अल्लाह के ऊपर एक किस्म का खेल होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए बस हमें अल्लाह कबूल कर ले, मर जाएंगे ना क्या होगा, शादी के बगैर मर गए क्या हो गया, अल्लाह के दीन के काम के बगैर मरे तो हसरत ही हसरत है। वहां जन्नत में कोई कुंवारा नहीं होगा, सब के जोड़े होंगे और अच्छे जोड़े होंगे और वो मुतजाज मुतहरा होंगे। तो बहरहाल माँ बाप पे बात होते हुए इतनी लंबी चली गई।